आज से हम तिमोथियुस की पत्री को आरंभ करेंगे। तिमोथियुस पौलुस द्वारा लिखी हुई तिमोथियुस की पत्री और उसको सीरीज में हम आगे करेंगे। मुख्य उद्देश्य यह है ताकि हम तिमोथियुस पौलुस जो तिमोथियुस को लिख रहा है, तिमोथियुस पहला तिमोथियुस, दूसरा तिमोथियुस, तीतुस, ये तीन पत्रियां ऐसी पत्रियां हैं जो सेवकों के लिए लिखी गई हैं, कलीसिया के जो पासबान हैं, कलीसिया के जो एल्डर्स हैं, कलीसिया के जो डीकन्स हैं, सेवक हैं, ना केवल उनके, लेकिन कलीसिया के सदस्यों के लिए, ये पूरी कलीसिया के लिए। तो कलीसिया में जो सदस्य हैं उनके लिए कैसा है और उसके साथ साथ सेवकों के लिए किस तरह से है। और जो आज हमने प्रेरित काम उसका 19 अध्याय पढ़ा था, प्रेरित काम उसका 19 अध्याय एक पद से कुछ पदों को पढ़ा था, 20 पद से, लेकिन अगर सच पूछा जाए 19 और 20 अध्याय एक ऐसा अध्याय है प्रेरित काम में जो इफिसियस की कलीसिया के बारे में है, किस प्रकार से इफिसी की कलीसिया स्थापित हुई पौलुस के द्वारा मिशनरी यात्रा में, और किस प्रकार से पौलुस को वहां सतावनी का सामना करना पड़ा, और कैसे पौलुस और तिमोथियुस को बंदीगृह में भी डाला गया लेकिन बाद में वो रिलीज हुए। और अब पहले दो समय पौलुस बंदीगृह में था, वो कुछ विद्वानों कहना है कि अलग अलग रीति से, कि जब प्रेरित काम की पुस्तक आप खत्म करते हैं 28 अध्याय में, तो वहां लिखा है कि पौलुस अपने दो साल तक अपने किराए के मकान में रहा। पौलुस अपने किराए के मकान में 2 साल तक रहा। सो ये माना जाता है कि ये 2 साल का जो किराए का मकान था, पौलुस को समझ लीजिए एक तरह से उसको कस्टडी में रख लिया गया था, बाहर नहीं निकल सकता था। लोग उसके पास आते थे, लोग मिलते थे, बातचीत करते थे, जो भी आता था मिलने के लिए पौलुस उनसे सुसमाचार सुनाता था, करता था, लेकिन उसके बाद पौलुस रिलीज कर गया, उसको छोड़ दिया गया। तो जब छोड़ दिया गया था तब उसके बाद दोबारा इफिसियस में आता, उसकी इच्छा तो कई सारी थी, और फिर इफिसियस में आता है और इफिसियों में कि कलीसिया में अब ये पौलुस तिमोथियुस को सेवक बनाकर वहां पर नियुक्त कर देता है पौलुस। तो जो तिमोथियुस की पत्री है व्यक्तिगत पत्री है जो तिमोथियुस के नाम पर है, तिमोथियुस है, तीतुस है, फिलिमोन है, ये व्यक्तिगत पत्रियां हैं लोगों को लिखी गई हैं। जब हम कुरिन्थियों को देखते हैं, रोमियों को देखते हैं, गलतियों को देखते हैं, इफिसियों को देखते हैं, ये जगह के नाम है और जगह में जो कलीसियां हैं उनको लिखी गई हैं। तो जब हम पत्रों पढ़ते हैं तो हमें समझना है जगह के नाम पर, तो कलीसिया जैसे लखनऊ की कलीसिया, बाराबंकी की कलीसिया, उन्नाव की कलीसिया, तो इस तरह से ठीक उस तरह से इफिसियों, कुरिन्थियों, कुलूसियों, थिस्सलुनीके, ये जगह के नाम है और जगह को, लेकिन जब नाम के साथ देते हैं तिमोथियुस, तीतुस, फिलिमोन, ये लोगों के नाम है, तो लोगों को व्यक्तिगत लिख लिए और लोगों के द्वारा वो पत्री को लिखते हुए वो संदेश पौलुस या आदेश है, निर्देश है, शिक्षा है, वो लोगों को पहुंचा रहा है और उसके द्वारा फिर कलीसिया को पहुंचाया जा रहा है। तो जब तिमोथियुस की पत्री में आते हैं तो पहले अध्याय में 20 पद हैं, तो पहले अध्याय में हम खासतौर से देखते हैं जो मुख्य है 20 पद का निचोड़ है या थीम है या उद्देश्य है, वो ये है कि कलीसिया के सदस्य और कलीसिया के सेवकों का उत्तरदायित्व, ये पूरा थीम अंत तक चलेगा, पूरा थीम अंत तक चलेगा। लेकिन जब हम इन 20 पदों को देखते हैं तो इन 20 पदों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते। पहला भाग है पहले अध्याय के 1 पद से लेकर 11 पद तक सिद्ध एवं खरी शिक्षा प्रति उत्तरदायित्व, सिद्ध एवं साउंड डॉक्ट्रिन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिद्ध एवं खरी शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व। दूसरा 12 पद से लेकर 17 पद तक सत्य सुषमाचार प्रति उत्तरदायित्व है, जो सुषमाचार है, जो सच्चा सुषमाचार है उसके प्रति उत्तरदायित्व, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो सेवक हो, सेवक की जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि सेवक सुषमाचार सही देंगे तब वो कलीसिया सीखेगी और कलीसिया फिर उसको पहुंचाएंगे, दूसरे बांटेंगे। तीसरा है 18 पद से लेकर 20 पद तक अच्छे विवेक और विश्वास के प्रति उत्तरदायित्व, अच्छा विवेक जिसमें शुद्ध विवेक कह सकते हैं, खराब विवेक कह सकते हैं, करीब नए नियम में 20 बार विवेक शब्द आया है और ये तो जब आगे जाएंगे तो हम देखते चले जाएंगे। तो ये 3 मुख्य भाग हैं इसके, पहला है सिद्ध एवं खरी शिक्षा प्रति उत्तरदायित्व, सत्य सुषमाचार प्रति उत्तरदायित्व, अच्छे विवेक और विश्वास प्रति उत्तरदायित्व। जब हम इस तिमोथियुस की पत्री को पढ़ते हैं तो मैंने कहा कि तिमोथियुस को पौलुस व्यक्तिगत रीति से लिख रहा है। तिमोथियुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए कहा जाता है कि उसने बचपन से प्रभु के सुसमाचार को सुना था और उसकी नानी और उसकी माँ दोनों विश्वासी थे। तीतुस का पिता जो था वो विश्वासी नहीं था, वो दूसरे परिवार से आया था, लेकिन बाद में वो अच्छा हम प्रेरित काम में आएंगे, प्रेरित काम उसका 16 अध्याय, थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि को देखना चाहेंगे, प्रेरित काम उसका 16 अध्याय और यहाँ पर हम तीतुस के बारे में थोड़ा सा पृष्ठभूमि के रूप में देखते हैं। एक्स चैप्टर 16 उसके पहले पद से लेकर 5 पद तक। तब वो दिर्बे और लुस्त्रा को भी गया और देखो वहां तिमोथियस नाम एक चेला था जो किसी विश्वासनीय यहूदी महिला का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। उसका लुस्त्रा तथा इकुनियम के भाइयों से में अच्छा नाम था। पौलुस इस व्यक्ति को अपने साथ ले जाना चाहता था, अतः उसे लेकर उन स्थानों में रहने वाले यहूदियों के कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। जब वे नगर नगर होकर जा रहे थे तो उन आदेशों को पहुंचाते हुए जिनका निश्चय यरूशलेम के विपरीतों और प्राचीनों ने किया था, लोग उनका पालन करें। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में दृढ़ होती गईं और संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ती गईं। तो यहाँ थोड़ा सा तिमोथियुस के बारे में, तिमोथियुस में बच्चे। अब जब हम इस बात को देखते हैं तो यहाँ देखते हैं जो नानी दादी या मम्मी ये लोग जो हैं, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को प्रभु के वचन को सुनाना और सिखाना। सुन लीजिए बहनों, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कहा जाता है कि बच्चों के सबसे पहले शिक्षक उसके माता पिता होते हैं। सो अगर आप अपने बच्चों को सुसमाचार के बारे में जान चाहते हैं तो संडे स्कूल बाद में स्थान है, संडे स्कूल का स्थान बाद में है। पहला स्थान आपका घर है और आपके स्वयं की जिम्मेदारी है। आप किस प्रकार से सुसमाचार को जानती हैं, किस प्रकार से बाइबल का आदर करती हैं, बाइबल से प्यार करती हैं, बाइबल को पढ़ती हैं, किस प्रकार से अगर आपके अंदर इच्छा है परमेश्वर के वचन प्रति और आप घर में रहकर अपने बच्चों के सामने पढ़ेंगे, एक शब्द उनको सिखाएंगे, एक वाक्य उनको सिखाएंगे, एक पद उनको बचपन से। इसीलिए नीति वचन में चार अध्याय में सुलेमान कहता है कि मैं जब बालक था, अपनी माता पिता का दुलारा था, उस समय मेरे को मेरे माता पिता ने शिक्षा दी थी। सो ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और तिमोथियुस के साथ ये ऐसी हुआ था, तिमोथियुस के जीवन में बचपन में परमेश्वर का वचन बो दिया गया था। तो जब पौलुस आता है वो देखता है कि ऑलरेडी विश्वास में है, लेकिन हाँ अब पौलुस उसको अपने साथ में रह करके उसको और अधिक उसके विश्वास को मजबूत करता है, उसको सही शिक्षा देता है, उचित शिक्षा देता है, अपने साथ सेवा में रखता है। यहां तक कि पौलुस के साथ वो ऐसा संगी बन गया कि पौलुस के साथ वो बंदी गृह में भी चला गया। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इब्रानियों का 13 अध्याय में देखिए, इब्रानियों के 13 अध्याय में पौलुस के साथ वो बंदी गृह में भी किस तरह से पौलुस उसके बारे में बोलता है। इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसका 23 पद 22-23 पद रहा हूं। हे भाइयों, मैं तुम्हें आग्रह करता हूं कि इस उपदेश के वचन को धीरे से सुन लो, क्योंकि मैंने तुम्हें संक्षेप में लिखा है। तुम्हें ज्ञात हो कि हमारा भाई तिमोथियुस रिहा कर दिया गया है। यदि वो शीघ्र आ गया तो मैं भी उसके साथ आकर तुमसे मिलूंगा। वो रिहा कर दिया गया क्योंकि वो भी बंदी में सुसमाचार के कारण गया था। सो इस तरह से तिमोथियुस को पौलुस ने तैयार किया था। बहुत कुछ है जो तिमोथियुस के बारे में हम देख सकते हैं, लेकिन समय नहीं है, पर कुछ बातों को हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे। तो मैंने कहा सबसे पहली बात एक मुख्य विषय, लेकिन जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तिमोथियुस परमेश्वर के वचन में मजबूत है, तिमोथियुस परमेश्वर के सिद्धांत में मजबूत है, तिमोथियुस परमेश्वर के विश्वास में मजबूत है। सो मेरे और आपको भी 3 बातें जानना है। क्या मेरा और आपका विश्वास दृढ़ है, मजबूत है? क्या मैं और आप वचन में मजबूत और दृढ़ है? क्या मैं और आप सच्चे सिद्धांत वचन में, साउंड डॉक्ट्रिन, उसमें मजबूत और दृढ़ है? वचन जानते हैं लेकिन हमें सिद्धांत हमारे पास सही नहीं है। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, तेल पानी भी बेच रहे हैं तो ये भी करे तो वो भी करे वो भी करे, नहीं 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 सब चलता नहीं। क्या परमेश्वर का वचन? और शुरू से कलीसिया जब स्थापित हुई, जब से ये संघर्ष चला आ रहा है और आज भी ये संघर्ष, कलीसियाएं बहुत उस समय भी कलीसिया बढ़ती चली आ रही थी, लेकिन उस समय भी झूठी शिक्षाएं उत्पन्न होती चली आती थी और कलीसिया में आकर के विश्वासियों को तरह तरह से भ्रमित कर रही थी। अब सेवकों के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई थी कि वे कलीसिया को सही शिक्षा में दे करके उनको दृढ़ करें, और इसलिए अगर सेवकों को कली सही शिक्षा देनी है और उनको दृढ़ बनाना है तो सेवकों को भी सही शिक्षा को जानना है, सेवकों को भी सही शिक्षा को जानना है, और तभी वो ऐसा कर सकेंगे। और इसीलिए पौलुस जब जेल खाने से 2 साल रहने के बाद रिहा होता है, उसके बाद फिर कुछ समय बाद फिर वो जेल में जाता है और रोम में, तो इस समय अभी उसको कुछ समय मिला है, और जब वो इफिसियो में आता है और इफिसियो में देखता है कि कलीसिया तो बढ़ रही है, विश्वास का काम है, ये सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ वहां गड़बड़ हो रहा है। तब वहां पर ये पौलुस आकर के तीमोथियुस को वहां पर एक सेवक बनाकर नियुक्त करता है और कहता है तू इस इफिसियो की कलीसिया की देखभाल कर, और इसकी देखभाल करते हुए लेकिन इन इन चीजों का ध्यान रहे, ये मैं तुझे आदेश दे रहा हूं, मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं। जब ये लिख रहा है तो आदेश दे रहा है, कमांड दे रहा है, निर्देश दे रहा है, सब कुछ कर रहा है कि ये चीज जरूरी है। हम तीमोथियुस के बारे में कुछ कुछ देखते चले आएंगे इधर से उधर से, लेकिन पहला दूसरा पद जो है वो अभिवादन है, ग्रीटिंग्स है। सारी ग्रीटिंग्स में और इस ग्रीटिंग्स में फर्क है, समय नहीं है, लेकिन आप जब घर में जाएंगे और घर में जाके कुरिन्थियों की पत्री को आप पढ़ेंगे या रोमियो की पत्री को पढ़ेंगे, पौलुस के जब अभिवादन को या ग्रीटिंग्स के लिखने के तरीके देखेंगे, जब आप आजकल तो पत्र नहीं चल, पहले पत्र लिखे जाते थे, जो पत्र लिखते थे मेरे प्रिय पिताजी माताजी प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र नमस्कार या जो कुछ भी है, आशा है कि आप प्रभु में आनंदित होंगे, इस तरह से हम लिखते थे, ठीक है, यही काम पौलुस कर रहा है, यही काम पौलुस। लेकिन जब दूसरी पत्री में आप देखेंगे तो वहां पर दो शब्द इस्तेमाल करता है ग्रीटिंग में, लेकिन यहां पर एक और शब्द इस्तेमाल करता है। आइए मैं सब पढ़िए, पौलुस की ओर से हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की और हमारी आशा मसीह यीशु की आज्ञा के अनुसार जो मसीह का प्रेरित है, विश्वास में मेरे सच्चे पुत्र तीमोथियुस को। अब यहां पर वो कह रहा है विश्वास में मेरे सच्चे पुत्र तीमोथियुस को, क्यों? क्योंकि अब पौलुस के साथ रहकर वो विश्वास में इतना मजबूत हो गया था, अब वो पौलुस का अगुआ है और पौलुस के सामने एक बालक के समान है, बच्चे के समान है, वो उससे प्यार करता है, उसको तैयार कर रहा है, इसलिए वो संबोधन में उसको अपना आत्मिक पुत्र बता सकता है और वो आत्मिक पुत्र बता रहा है। यहां पर आत्मिक पुत्र बताया है, दूसरी जगह में उसने कहा है तीमोथियुस प्रिय तीमोथियुस, ये भी करके संबोधित करा है, कई अलग अलग स्थल है। लेकिन आगे चलके पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह दया और शांति मिले। यहां पर एक एक्स्ट्रा वर्ड है, कौन सा एक्स्ट्रा शब्द है? हर एक ग्रीटिंग्स में, हर एक जगह अभिवादन में, और यहां अभिवादन में फर्क है, हर जगह अभिवादन पढ़ लीजिए, पत्र में पढ़ लीजिएगा, वहां पर अनुग्रह और शांति है, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर शांति तुम्हें बनी रहे। वो क्यों? मैं बार बार बोलता हूं, अनुग्रह और शांति इसलिए इस्तेमाल करी थी, जब अन्य जाति लोग आपस में मिलते थे तो वो आपस में एक दूसरे को संबोधन करते थे ग्रीट करने के लिए अनुग्रह शब्द के इस्तेमाल, कि हमें हमारे पर परमेश्वर का अनुग्रह हो, ग्रेस हो। जब यहूदी लोग आपस में मिलते थे तो शांति का जब जो इब्रानी भाषा में वो शालोम शब्द था, वो शालोम के द्वारा। लेकिन यहां पर एक तीसरा शब्द आया, दया। दया क्या मतलब है? ये सच है सेवकों के ऊपर परमेश्वर की दया का होना बहुत जरूरी है, मर्सी बहुत जरूरी है। बिना परमेश्वर के दया के मर्सी के सेवक लोग अपनी सेवा में संभाले नहीं जा सकते। और पौलुस तीमोथियुस को लेकर कह रहा है तीमोथियुस परमेश्वर की दया परमेश्वर की मर्सी तुझ पर बनी रहे ताकि जब तू लोगों के बीच में शिक्षा दे तो दृढ़ता से दे सके, खराई से दे सके, सच्चाई से दे सके, धार्मिकता से दे सके, और इसके लिए परमेश्वर की दया तुझको चाहिए। और इसलिए ये अभिवादन में एक नया शब्द यहां पर जोड़ रहा है। और तब आगे चलकर क्या कहता है, तो पहले दूसरे पद में वो अभिवादन करता है, पहले दूसरे पद में उसका अभिवादन है, उसके बाद तीन पद से लेकर ग्यारह पद तक वो इस बात को बार बार कहना चाह रहा है कि किस तरह से एक खरी शिक्षा के प्रति मेरी और आपकी जिम्मेदारी पाई जाती है, सेवकों की जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी, खरी शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व। और ये क्या कह रहा तीन पद में, जैसा मैंने मैसेडोनिया जाते समय तुझसे इफिसियस में रहने का आग्रह किया, मैं समझा चुका हूं, रिफ्यूसिस में इफिसियस में रहने का आग्रह किया। अब पौलुस तीमोथियुस कहां है? इफिसियस में है, वहां रहकर उस कलीसिया को संभाल रहा है, उस कलीसिया का वो अगुआ है, उस कलीसिया में वो शिक्षा दे रहा है, उस कलीसिया का वो एल्डर है, उसकी जिम्मेदारी तीमोथियुस के ऊपर, इसकी जिम्मेदारी है इस कलीसिया की। आप भी वहीं रहे, आप भी वहीं रहे, जिससे तुम वहां कुछ लोगों को आदेश दे कि वे सब दे सके कि वे अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। अब यहां पर आदेश शब्द है, पौलुस कह रहा है मैंने तुझे वहां रखा है, अब तुझ पर यह अधिकार दे रहा हूं ताकि तुझे लोगों को यह आदेश देना है। और कई बार हम इस बात को देखेंगे जहां वो आदेश का शब्द होता है इस्तेमाल करता है, पांचवें पद में भी वो आदेश का शब्द इस्तेमाल करता है, इसी में 18 पद में भी वो आज्ञा का इस्तेमाल करता है। ये है तो क्या मतलब है कि एक अगुए के पास ये अधिकार है कि वो सही शिक्षा के प्रति लोगों को आदेश दे सके, ये शिक्षा गलत है इसको मत मानो, उद्धार के सुसमाचार को के साथ समझौता मत करो, प्रभु के सुसमाचार के साथ समझौता मत करो, उद्धार व्यवस्था से नहीं। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो समझा रहा है, आगे आएंगे उसमें। तो ये कह रहा है किस बात को देखना है, तो कह रहा है पहली बात तुमको इस तरीके से क्या कह रहा है चौथे पद में, ना उन दंत कथाओं और असीमित वंशावलियों पर ध्यान दें जो केवल निर्थक विवाद को ही बढ़ाते हैं और परमेश्वर की उस योजना को पूर्ण नहीं करते जो विश्वास पर आधारित है। दो चीजें, एक और परमेश्वर की पूर्ण योजना है, एक और मनुष्य की कहानी और कथाएं। इसी भाग में चार पद में दो बातें वो कह रहा है। एक और कह रहा है उन दंत कथाओं असीमित वंशावली पर ध्यान ना दें जो केवल निर्थक विवाद ही बढ़ाते हैं और परमेश्वर की उस योजना को पूर्ण नहीं करते जो विश्वास पर आधारित है। परमेश्वर की पूर्ण योजना क्या है? क्या विश्वास? वो विश्वास जो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर है। वो आगे चल के हम देखेंगे उसकी व्याख्या, वो और स्पष्ट रूप से आगे करके करता है। दंत कहानियां या गड़ी चढ़ी बातें या वो सारी चीजें जो पुराने से चली आ रही है, वंशावली से चली आ रही है, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से बात करते हैं, कई बार लोगों के सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई आ जाती है। जब वे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और वो जान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा उद्धारकर्ता प्रभु है, और इस बात को जानने के बाद उसकी उपासना भी करना मांगते हैं, उसकी आराधना भी करना मांगते हैं, उस पर विश्वास भी करना मांगते हैं, लेकिन वो बातें जो वंशावली से चली आ रही हैं उनको छोड़ना उनके लिए सरल नहीं होता। शायद शहर में रहकर, कलीसिया में रहकर वो यहां कर ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो गांव में पहुंचते हैं फिर उनके लिए बाध्यता आ जाती है और वो नहीं छोड़ने पाते। और ये एक ऐसी चीज है जो वर्षों से या पीढ़ियों से जुड़ी चली आती है, वर्षों से चली आती है। बहुत सारी चीजें, रीति विधियां हमारी, हमारे मत हैं, हमारे घरों के साथ, बड़ों के साथ सब कुछ है। और एक चीज को ध्यान रखिए, संस्कृति जो होती है, संस्कृति हमेशा बदलती जाती है, विकसित होती है। संस्कृति विकास के साथ परिवर्तित होती है। एक समय था हमारे पूर्वजों की संस्कृति थी, वो नीचे बैठकर खाना खाया करते थे, खड़ा उतार दी, लेकिन जब वो पढ़ लिख लिए, बच्चे बढ़ गए और आगे गए, शहर में आ गए, विकास में आ गए, बहुत कुछ बदल गया, बहुत चीजें बदल जाती हैं, उनका पहनने ओढ़ने का तरीका बदल जाता है, खाने पीने का तरीका बदलता है, स्थिति बदलती है, बहुत कुछ। विकास के साथ संस्कृति बदलती है। तो हम ये ना कहें कि चीज संस्कृति में चली आ रही, बहुत सारी चीजों में देखना है, ये विषय अलग है, कभी चाहेंगे तो मैं अलग से समझा सकूं उसको। लेकिन वो चीजें जो रूढ़वादिता से बंधी चली आती हैं, मेरे पूर्वज करते थे, हमारे ग्रह देवता, हमारे ग्रह घर के जो जिनको हम पूछते चले आए, हमारे बाप दादा थे या दादा प्रधान है, वो मर गए, उसके बाद छोड़ गए, उनके करना उनको, अब उनको हटाना मुश्किल है। लेकिन वो यह कह रहा है कि भैया ये तुम इतने दिन से इसको करते चले आ रहे हो, इसमें उद्धार नहीं है, इसमें छुटकारा नहीं है, इसमें जीवन नहीं है, इसी ने तो तुम्हें बांध रखा है, इसी से तो तुम्हें छुटकारा चाहिए, इसी से तो तुम्हें अलग होना है। वास्तव तो यह है कि तुम उसको भी नहीं, अभी तक नहीं जाने हो जो परमेश्वर की जो योजना है। परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर की योजना जो विश्वास के द्वारा जिसको तुम समझते हो, विश्वास के द्वारा जिसको तुम अपना सकते हो, विश्वास के द्वारा तुम अपने जीवन में ले सकते हो, और जब तुम उसको लोगे तो वो चीजें तुम्हारे से अलग हो जाएंगी। और वहां पर भी कलीसिया में ऐसा था, हम बाइबल को पढ़ लेते हैं बड़े आसानी से, लेकिन जब आप उसके और पीछे बैकग्राउंड में जाते हैं तो काम उसका 19 और 20 अध्याय पढ़ के देखिएगा क्या स्थिति थी वहां पर, क्यों पौलुस को पकड़ लिया गया था। वो देवी जो इफिसी में देवी मानी जाती थी, वो उसके कारण लोग व्यापार करते थे, मूर्ति बना बना के, चांदी की मूर्ति बना बना के बेचते थे। अब सोचिए कि अगर सुसमाचार जब बढ़ रहा है, और अभी बच्चे पढ़ रही थी कि उन्होंने कितनी पुस्तकें उन्होंने इकट्ठा करी और क्या कर दिया, जला दिया। जब ये सारी चीज जला दी गई तो उस स्थान में क्या होगा? जब आगे आप पढ़ते हैं तो आप लिखा हुआ है 20वें अध्याय में एक बहुत बड़ा हुल्लड़ मच गया और लोग कहने लगे, पौलुस को कहने लगे, भैया ये तो हमारे विरोध में है। क्यों? वो रूढ़वादिता, वो सारी चीजें खत्म हो रही है, सरल नहीं है, और उसके कारण फिर पौलुस को और भी इसको सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा। सो जब हम परमेश्वर के वचन में आते हैं तो वो ऐसी स्थिति में होकर पौलुस ये निर्देश दे रहा है कि उसको सिखाना है। तब वो कहता है पांचवें पद में पूरी योजना, तो विश्वास पर आधार पांचवें पद में, परंतु इस आदेश का अभिप्राय यह है। क्या आदेश का अभिप्राय है? जो मैं तुझे आदेश दे रहा हूं, जो मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं कि तिमोथियस तुझे वहां इफिसुस में रहकर, उस कलीसिया में रहकर तुझे ये करना है, इसको करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है, उसका अभिप्राय यह है, तीन बातें हैं, पवित्र हृदय, शुद्ध विवेक, निष्कपट विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। ये प्रेम कौन सा प्रेम? वो प्रेम जो परमेश्वर के प्रति है, और उस परमेश्वर के प्रेम के प्रति प्रेम होकर आपस में एक दूसरे के प्रति है। ये प्रेम, वो प्रेम कैसा है? तीन चीजें हैं। वो कह रहा है
पवित्र हृदय, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन में, और हृदय तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है और इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, इसके भेद को कौन समझ सकता है। लेकिन उसके साथ साथ फिर एक और चीज ऐड कर रहा है, वो कह रहा है शुद्ध विवेक। शुद्ध विवेक, विवेक जो है वो हमारी वास्तविक स्थिति को दिखाता है। हृदय धोखा दे सकता है, हृदय धोखा दे सकता है, भैया चीज पड़ी हुई थी कोई उठा नहीं रहा था, ठीक है तुमने उठा ली तो कोई बात नहीं, किसी की होती ले आता पड़ी है तो उठा लिया। लेकिन विवेक कहेगा नहीं नहीं नहीं, तूने लालच किया है, तूने चोरी की, तूने उठाया, उसको वहीं रहना देना चाहिए। विवेक मेरी और आपकी वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। हम कई बार अपने विवेक में होकर काम नहीं करते, इसलिए मुझे और आपको प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु जी मेरे विवेक को हमेशा आप जागृत और सचेत रखिए, वो हमें बचा सकता है। तो यहां पर कहता है शुद्ध विवेक तथा निष्कपट विश्वास। कैसा विश्वास? जिसमें कोई कपट ना हो, छल ना हो, धोखा ना हो, जिस विश्वास में स्वार्थ ना हो। हम क्यों विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर? अरे हम चंगे हो जाएंगे, ये स्वार्थी विश्वास है। हम क्यों विश्वास करते हैं यीशु मसीह में? हमें नौकरी लग जाएगी इसलिए हम विश्वास करते हैं, चर्च में आते हैं। क्यों विश्वास करते हैं? अरे हमारी शादी हो जाएगी, ये झूठा है, छल का है, ये निष्कपट नहीं है, इसके अंदर कपट भरा हुआ है। और कितने लोग इस कपट को लेकर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि आज हमारा कोई ना कोई भला हो जाएगा। संसारिक भलाई पूर्ण भलाई नहीं है, वो तो फिर भी आपने नाश हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है मनुष्य सब कुछ को प्राप्त करे और अपने प्राणों की बहान नहीं उठाए तो उसे क्या लाभ। हमारे अंदर वो विश्वास उत्पन्न होना चाहिए जिसके अंदर कपट ना हो, स्वार्थ ना हो, छली ना हो, अपनी चाहना ना हो, कोई चीज ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए। कितनी बार हम इसी विश्वास को लेकर, हमने विश्वास कर लिया, विश्वास त्याग करना सिखाता है, विश्वास घुटने टेकना सिखाता है, विश्वास परमेश्वर पर निर्भर आ सकता है, विश्वास परमेश्वर की दृष्टि करता है। अब्राहम के विश्वास को पढ़िए, उसको देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे गवाह हैं, इब्रानियों उसकी 11 अध्याय में कितने गवाह हैं जिनका उनका बादल हमारे सामने है, ऐसे विश्वास कुछ। और पौलुस कह रहा है तिमोथस को, तिमोथस ये भीड़ की भीड़ इफिसुस में प्रभु में चली आ रही है, जब उस समय भी सुसमाचार प्रचार किया था, कलीसिया बनती चली आ रही थी। आप मत सोचिए कि सारी कलीसिया बहुत सिद्ध कलीसिया थी, उसमें कोई ऐसी गलती नहीं थी, मत सोचिए। अगर सोचते तो गलत सोचते हैं, तो ये पत्रों की जरूरत नहीं पड़ती, वो मेरे और आपके समान ही स्वभाव में थे, उनमें भी मिली जुली भीड़ थी। जब तक इस पृथ्वी पर है, कोई इस पृथ्वी पर कोई सिद्ध कलीसिया परफेक्ट कलीसिया नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका बहाना बनाए। कलीसिया को परमेश्वर के पवित्र वचन की जरूरत है, सिद्ध शिक्षा की जरूरत है, साउंड डॉक्ट्रिन की जरूरत है, ताकि उस शिक्षा के द्वारा कलीसिया जब बात करते हैं तो कलीसिया मैं और आप हैं। आप कहां जा रहे हैं? हम सियोन चर्च जा रहे हैं। क्या मतलब आप सियोन चर्च जा रहे हैं? एक बिल्डिंग होगी। आप किसके साथ संगति करते हैं? किस जगह पे संगति करते हैं? बिल्डिंग करते हैं। किसके साथ संगति करते हैं? सियोन कलीसिया के साथ। तब वहां कौन हो गए? लोग हो गए। लोग हो गए, स्थान की बात नहीं, तो वो कलीसिया इफिसुस की कलीसिया लोग हैं वहां पर। अब पौलुस बात पे कह रहा है, तब आगे चल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या परिणाम है? अगर निष्कपट विश्वास नहीं है, अगर विश्वास कपट सहित है, यदि हृदय पवित्र नहीं है, यदि विवेक शुद्ध नहीं है, तो क्या परिणाम होगा? छठे पद में, कुछ लोग तो इन बातों से भटक कर निर्थक विवाद में फंस गए। क्यों? क्योंकि उनका हृदय पवित्र नहीं है, उनका विवेक शुद्ध नहीं है, उनके विश्वास निष्कपट नहीं है, इसलिए वाद विवाद करते हुए क्या हो गए? वो निर्थक विवाद में फंस गए। नहीं भैया, इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, इस तरह से मीटिंग करनी चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। और कितने लोग इस विवाद में फिर चलाते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं चाहिए, होना चाहिए, इस तरह ये उस समय से चला रहा है। हमें समझना है परमेश्वर के वचन को। छोटी छोटी चीजों को लेकर के लोग अपने विश्वास को, अपनी शिक्षा को दृढ़ बनाना चाहते हैं, पर परमेश्वर के वचन में क्या सिखाता? यहाँ पर वही कलीसिया में समस्याएं थी और पौलुस उन्हीं को सिखाना चाह रहा था। अभी वो फाउंडेशन ले कर रहा है, अभी न्यू डाल रहा है, आगे चल करके और शिष्टता के साथ बढ़ेगा। वो लोग क्या कह रहे थे, उनके सामने क्या था? वो कह रहे थे सातवें पद में, वे व्यवस्था के शिक्षक बनना तो चाहते हैं, व्यवस्था के शिक्षक तो बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हो गया? परंतु जो कुछ कहते हैं ना तो उससे और ना उन बातों को समझते हैं जिन्हें दृढ़ता पूर्वक कहते हैं। बहुत दृढ़ता पूर्वक तो कह रहे हैं, बोल तो रहे हैं। अभी तक इफिसी के विश्वास में आए हुए यहूदी लोग बहुत विश्वास में आते हैं, और जब विश्वास में आते हैं, यहूदी लोग विश्वास में आने के बाद भी फिर भी यहूदी पंथ की बातों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी उनके दिमाग में भरा पड़ा था, क्योंकि रूढ़वादी चली आ रही थी। व्यवस्था में ऐसा लिखा है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना वो करना, आप जानते हैं व्यवस्था के नियमों को। और आज भी बहुत सारे अन्य जाति प्रसभु में आप जाइए, वही चीजें ली हुई हैं। तो वो चीज उनके सामने थी और वो कह रहे थे, तो कह रहे हैं कि सब बातों को दृढ़तापूर्वक, परंतु हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था का उचित उपयोग करे तो व्यवस्था बनी है। व्यवस्था क्या कर रही थी, व्यवस्था क्या करती है? व्यवस्था सबसे पहले पाप को प्रकट करती है। बार बार परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो लोग व्यवस्था का दांव बार बार कर रहे थे, अगर व्यवस्था को सही रीति से समझते तो उनको उनके पाप प्रकट होते कि व्यवस्था क्या कह रही है। व्यवस्था कहती है जो पारे प्राणी पाप करे वो निश्चय मर जाएगा, दंड को प्रकट कर रही है ना। व्यवस्था बताती है कि रोमियो 1-2 पदों को पढ़ लेंगे हम, उसका 3 अध्याय और उसका 20 पद, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई प्राणी व्यवस्था के कारण से धर्मी नहीं है, नहीं ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप का बोध होता है। व्यवस्था धर्मी ठहराने के लिए नहीं थी कि तुम ये कर लो तो तुम बहुत पवित्र हो जाओगे, ये कर लो तो धर्मी बन जाओगे, ऐसा कर लो तो ऐसा कर लोगे। और आज भी कितनी बार हम उसी तरह का जीवन को व्यतीत करते हैं। हम चर्च क्यों जाते हैं, हम दान प्रभु को क्यों देते हैं, बाइबल क्यों पढ़ते हैं, प्रार्थना क्यों करते हैं? इन सारी चीजों के द्वारा हम अपनी धार्मिकता को प्रकट करना चाहते हैं, वो उससे परमेश्वर खुश नहीं होता। लेकिन व्यवस्था क्या है? व्यवस्था मेरे और आपके जीवन में मेरी वास्तविक दशा को दिखाती है, क्योंकि एक व्यवस्था के नियमों को तोड़ने द्वारा हम कितनों को तोड़ते हैं, सबको तोड़। तू चोरी ना करना, चोरी के साथ ना करना का मतलब क्या, उसके साथ कौन सी दूसरी व्यवस्था आ गया है, है? तू लालच ना करना, उसके साथ दूसरे जुड़ गया, तो एक के साथ एक जुड़ जाती है। जो एक नियम टूटता सब नियम टूट जाते हैं, एक कड़ी के समान है। लेकिन व्यवस्था इसलिए थी कि वो पाप का बोध कराए मनुष्य को, और इसलिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग उस पाप उस चीज को तो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उसको अपने आड़ बना रहे थे। व्यवस्था दंड को प्रकट करती है कि जो प्राणी पाप करे वो निश्चय मर जाएगा, रोमियों के 6 अध्याय में आप जानते हैं। व्यवस्था न्याय को प्रकट करती है, परमेश्वर का न्याय, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जो प्राणी पाप करेगा निश्चय मरेगा। ये परम मेरे प्रियो, ये सच है। मुझे और आपको पाप को गंभीरता से लेना है। यदि आप कलीसिया में आ रहे हैं 1 साल से 2 साल से 6 महीने से, यदि आपने बार बार परमेश्वर के वचन को सुना है, संदेश को सुना है कि पाप से परमेश्वर घृणा करता है, पाप भयंकर बीमारी है, पाप एक कोड़ के समान है जिसको आप छिपा नहीं सकते। आप छिपा लेंगे कोड़ को, छिपा लेंगे थोड़ा सा कोड़ छिपा के रखेंगे, वो धीरे धीरे अंदर अंदर बढ़ता चला जाएगा और वो आप ही का नुकसान करेगा, और ऐसा है। और इसलिए यदि आपने पाप का उपचार नहीं किया, आप सोच रहे पाप का उपचार मैं प्रार्थना करके कर लूंगा, मैं दान देके कर लूंगा, मैं चर्च जाके कर लूंगा, मैं ये करके कर लूंगा, नहीं। पाप का उपचार केवल एक तरह से है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान किया है, उस पुत्र के सामने अपने पाप का पश्चाताप करना, अंगीकार करना, प्रभु मैं पापी हूं, मैं मान लेता हूं, मैं मान लेती हूं मैं पापी हूं, और मैं मान लेता हूं कि पाप की मजदूरी मिलती है, और तब पश्चाताप करना, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं, मुझे आप क्षमा कीजिए, मेरे जीवन को ग्रहण करिए, और मैं आपसे जीवन चाहता हूं, मैं आपसे जीवन चाहती हूं, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपना चाहता हूं, आपके हाथों में सौंपना चाहती हूं। ये जब तक सच्चाई के साथ ना हो, पाप का उपचार नहीं। पाप को मान लेना है, पाप से पश्चाताप कर लेना है, पाप से क्षमा मांगना है, और पाप के प्रति घृणा करते हुए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर देना, यह है। लेकिन इस सबको में पौलुस बार बार इस बात की शिक्षा देता है, पौलुस बार बार शिक्षा देता है। तो जो ये कह रहे थे लोग रोम तीमुथियुस में कि किस प्रकार से, वो कह रहे हैं परंतु हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था का उचित उपयोग करता है तो वह व्यवस्था भली है। क्यों भली है? क्योंकि वो पाप को दर्शाएगी, और अगर पाप को दर्शाएगी और आप पाप के प्रति कायल होंगे तो आप पश्चाताप करेंगे, और अगर आप पश्चाताप करेंगे प्रभु से आप क्षमा मांगेंगे, अगर आप क्षमा मांगेंगे प्रभु आपको क्षमा करेगा, और क्षमा करेगा तो आप उसके संतान बनेंगे। इसलिए भली है, इसलिए इसमें भलाई है, ये इसकी भलाई का कारण है। वो कह रहा है व्यवस्था, अगर आप व्यवस्था को आप सचमुच में उचित उपयोग करेंगे तो वो आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। भलाई उत्पन्न करने का मतलब ये कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही रीति से बनने पाएगा। और तब उसके बाद एक 14 चीजों की सूची देता हूं, कह रहा है इस तथ्य पर ध्यान देकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं परंतु किस लोगों के लिए। अब ये जो लोग हैं, करीब 14 अलग अलग तरह के लोग हैं। कैसे लोग हैं? निरंकुश, जिनको अंकुश में न रखा जाए, जिनको नियंत्रण में न रखा जाए, जो नियंत्रण में नहीं रहते। निरंकुश आपको मालूम है, घोड़े को कैसे अंकुश में रखा जाता है? लगाम के द्वारा। छोड़ दिया जाए तो नहीं, समझ रहे? किससे? कई लोग निरंकुश होते हैं, वो किसी के नियंत्रण में रहते हैं, हम अपने मन के मर्जी है, जैसा चाहे वैसे, कौन हमें बोल सकता है, कौन हमें कैसा है, अपने मन मर्जी के राजा हैं। पदरी, भक्तिन, पापियों, अशुद्धों, अधर्मियों तथा माता पिता की हत्या करने वाले वालों। कौन माता पिता की हत्या करने वाले? माता पिता क्या मतलब हत्या करना? माता पिता का अनादर करना, माता पिता को तुच्छ ठहराना, माता पिता को मूर्ख समझना। कितने बच्चे हैं जो अपने माता पिता को बाद में चलकर मूर्ख समझ। मैं हमेशा बहुत इस बात पर गंभीरता से बोलता हूं, कि जब भी विषय आता है, मैं इस बात को स्मरण दिलाना चाहता हूं, मैं अक्सर एक बच्ची की कहानी बताता हूं। एक बच्ची थी और वो पढ़ लिख के थोड़ा सा बढ़ गई, उसकी अच्छी दोस्त बन गई, कई दोस्त बन गए, और जब भी उसके घर में उसकी सहेली आती थी, उसने अपनी माता से कह रखा था, माँ से कह रखा था कि माँ तू बाहर निकल के मत आना, बाहर निकल के ना आना, मेरी सहेली आएंगी वो बात कहेंगी, तू किचन में रह के चाय बना देना, मैं आऊंगी ले जाऊंगी, जो कुछ मैं कहूंगी कर देना, लेकिन बाहर मत निकल कर आना। और जब उसकी सहेली आती थी, पूछती थी, अपनी सहेलियों से बातचीत कर सब कुछ करती थी, सहेली आती थी पूछती थी मम्मी कहाँ, अरे मम्मी थोड़ा सा व्यस्त है, यह करके टाल देती थी। वो लड़कियों से कभी नहीं मिलवाती थी, अपनी सहेलियों से कभी नहीं मिलने देती थी, हमेशा कभी नहीं मिलने थे, और माँ किचन में सब कुछ काम करती थी लेकिन आंसू बहाती रहती है। और तब उसके बाद एक दिन ऐसा आया, कुछ सहेली आई, उसके बाद उसने फिर से अपनी माँ से कहा तू किचन में काम कर, मेरी सहेली आई उनके लिए चाय बना दे, चाय बना दे। माँ के आंसू टप टप कर रहे थे, आंसू टपक रहे थे, ये आई माँ तू रो क्यों रही है, माँ तू क्यों रो रही है। पहले उस माँ ने उसको टाला, कुछ नहीं, नहीं बेटा नहीं बेटा। तब बाद में फिर उसके बाद फिर उसने पूछा माँ तू रो क्यों रही है, तू कहा चाय ले जाओ अपने दोस्तों के दे दो। अच्छा ठीक है चाय तो दे दूंगी, लेकिन तू रो क्यों रही है ये तो बता दे मुझे। तब उसने कहा कि तू आज मेरे को अपनी सहेलियों के सामने ले आने से लजाती है, क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ था, उसकी चेहरे माँ का चेहरा जला हुआ था और जलने के कारण इतना भद्दा हो गया था। तब कहने लगी माँ बेटा तुझे याद नहीं है, तू शायद भूल गई है, तू नहीं जानती कि अगर मैं उस दिन आग में, जब तू 6 महीने की थी, अगर मैं आग में जल करके खुश करके तेरे को ना बचाती तो तू आज ना होती, लेकिन मैं तूने तेरे को बचाने के लिए मैंने अपने चेहरे को झुलसा दिया और आज तू उस चेहरे को दूसरों सामने ले आने में लजाती है, शर्माती है। वो बच्ची ने पश्चाताप किया, रोई, कहने माँ मुझे क्षमा करना, मैंने अभी तक ऐसे इसको नहीं सोचा। और उस दिन से उसने माँ को अपने फ्रेंड के पास ले गई, ये मेरी माँ है, इसका चेहरा मेरे कारण हुआ है, इसका चेहरा मेरे कारण हुआ है, अगर ये ना जलती तो आज मैं ना बचती, इसने मुझे बचाने के लिए अपने चेहरों का ऐसा, और मैं आज तक इसको छिपाए रही, आज तक इसको छिपाए रही, मैं लजाती थी, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं कि इसने मुझे बचाया है, उसने मुझे जीवन दिया। मेरे प्रियो, कितनी बार हमारे साथ जीवन में ऐसे ही होता है, हम भूल जाते हैं, चाहे प्रभु काम हो चाहे माता पिता का काम हो, हम भूल जाते हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए और हमें ध्यान रखना। और वो यहां पर कहता है, तब आगे चल के कहता है, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, अपहरण करता हूं, झूठ बोले, 14 नामों की सूची है ये। ये क्या कह रहा है? है जो उस खरी शिक्षा के विरोध में है। क्या शब्द आया है? ये 14 प्रकार के लोग हैं जो खरी शिक्षा के विरोध में हैं। अब घर में जाके सूची पर अध्ययन करिएगा और देखिएगा कहां पर मैं और आप आ रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं मेरा और आपका जीवन है और इसलिए हम खरी शिक्षा के विरोध में है। खरी शिक्षा बहुत ही जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद हो, इन 40-45 साल की सेवा में जब से मैं प्रभु में आया, धीरे धीरे बढ़ा, बहुत लोग हमारे संपर्क में आए, बहुत लोगों ने हमें अपने साथ में लाना चाहा। 12 बंकी में हम अकेले खड़े रहे, कितने लोगों ने कलीसियाएं बनाने की कोशिश करी, पर परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने जाइन को खड़ा रखा। हमने संघर्ष किया, हम लोगों के साथ भीड़ में नहीं भागे, हमने लोगों के साथ समझौता नहीं किया, बहुत लोगों को हमने मना करा, लेकिन वचन को थाम करके हम चले, धीरे धीरे चले हैं, धीरे धीरे चले हैं, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े हैं। परमेश्वर ने मजबूत किया है, मजबूत किया है। अगर आज हम संसार के पीछे चलते शायद कुछ और स्थिति होती। मेरे प्रियो, खरी शिक्षा का हमें विरोध नहीं करना, और जब हम किसी साथ वचन को बांटते हैं और अगर वो नहीं सुनते तो उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आप इनकी आंख खोल दीजिए ताकि खरी शिक्षा को समझ सकें। आगे हम चलेंगे, देखेंगे खरी शिक्षा क्या है, उस पर और कैसे पौलुस को समझाता है। तो यहां पर पहले पद से लेकर 11 पद तक, लेकिन 11वां पद बहुत मुख्य पद है। वो क्या कह रहा है? पर जो परम प्रधान, परम धन्य, परमेश्वर के महिमा में सुसमाचार के अनुसार है और मुझे सौंपा गया है। पौलुस क्या कह रहा है? ये लोग व्यवस्था की बातें तो कर रहे हैं लेकिन इन्होंने अभी तक सुसमाचार को नहीं जाना। ये व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं, व्यवस्था को फिर भी नहीं समझते, क्योंकि व्यवस्था तो उनको जीवन प्रदान कर देती है अगर इस सच्चाई के साथ जानते हैं। व्यवस्था को तो केवल इन्होंने एक अपना बहाना बनाया हुआ है, उसका भी तो पालन नहीं करते। अगर उसको समझ के साथ चलते तो उसका जीवन प्रदान करती, क्योंकि इसके द्वारा इनको पाप का बोध हो जाता, इसके द्वारा परमेश्वर के कार्य का बोध हो जाता और ये परिवर्तित हो जाते और इनके लिए आशीष का कारण बन जाता। इन्होंने उसको तो नहीं सोचा, लेकिन वास्तव तो क्या है? वास्तव यह है कि सच में परमेश्वर, वो अद्भुत परमेश्वर, महिमा का सुसमाचार के अनुसार वो मुझे सौंपा गया है। पौलुस इस बात को बहुत ही दृढ़ता से कहता था, इसलिए तो कहता है रोमियो उसके पहले अध्याय में, मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता क्योंकि यह सुसमाचार मुझे सौंपा गया है। उसने उस सुसमाचार को ओन किया था, अपना बनाया था, ले लिया था। ओ मेरे प्रियो, क्या आपने उस सुसमाचार को अपना बनाया है? क्या उस सुसमाचार को आपने अपने जीवन में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने विचार में, अपनी भावना में, अपने अंदर ले लिया है? कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लेता। पौलुस कहता है ये मुझे सौंपा गया है, उसका सुसमाचार। वो कहता है रोमियो में अगर अध्ययन करेंगे, ये परमेश्वर का सुसमाचार है, ये पुत्र का सुसमाचार है, बाद में चल के कहता है ये मेरा सुसमाचार है, उसने उसको अपने जीवन में ले लिया था और इसलिए कहता है कि सुसमाचार मुझे सौंपा गया था। तब आगे चल करके अब 12 पद से लेकर के 17 पद तक ये सुसमाचार को वर्णन करता है बहुत ही सुंदर रीति से। जो सुसमाचार उसको सौंपा गया था वो सुसमाचार किस प्रकार का सुसमाचार है, क्या कह रहा है सुसमाचार, क्या कह, जल्दी से 12 पद से, मैं प्रभु मसीह यीशु को धन्यवाद हूं। प्रभु मसीह यीशु, कई बार पौलुस इन तीनों को साथ लाता है। कई बार कहता है मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, कई बार कहता है मसीह की प्रतीक्षा करता हूं, कई बार वो कहता है क्या नाम से यीशु का, लेकिन कुछ स्थानों पे वो ये, जैसा तुमने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया उसी में चलते रहो। तो जब वो तीन शब्दों को साथ में लाता है तो क्या कह रहा है, तीन चीज इन शब्दों को, वो कह रहा है प्रभु मसीह यीशु। यीशु नाम का अर्थ है उद्धारकर्ता, मसीह नाम का अर्थ है मसाया, बलिदान किया हुआ, जो मेरे और आपके लिए बलिदान किया हुआ। प्रभु नाम का अर्थ है, जो इंग्लिश में लॉर्ड शब्द करके आया है कैपिटल एल से, वो प्रभु जो प्रभुता करने वाला है, राज करने वाला है। वो ये कह रहा है कि ना केवल वो उद्धार करता है, ना केवल वो मसीहा बलिदान किया हुआ है, लेकिन वो प्रभुता करने वाला है। प्रभु उसका साम्राज्य, सामर्थ, अधिकार सब कुछ है। और इसलिए कहता है मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं, अर्थात मैं उस यीशु को जो मेरा उद्धार करता है, उस मसीह को जो मेरे लिए बलिदान हुआ है, उस प्रभु को जो मेरे जीवन में प्रभुता करता है, उसको मैं धन्यवाद देता हूं। क्या ये मेरे और आपके जीवन में है? क्या मेरे और आपके जीवन में है? क्यों मेरा और आपका सचमुच में, हम कह सकते हैं वो उद्धार करता है, हम ये कह सकते हैं वो मेरे लिए बलिदान हुआ, लेकिन क्या कह सकते हैं कि वो मेरे जीवन में प्रभुता करता है? मेरे विचारों में, मेरी इच्छाओं में, मेरे निर्णयों में, मेरे कार्य में वो प्रभुता करता है? यीशु मसीह प्रभुता करने वाला होना है, उससे लिए प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु जी आप मेरे जीवन में प्रभुता कीजिए। तब आगे चलकर कहता है 5 बातें हैं उस सुसमाचार के बारे में, उस यीशु ने क्या करा उसके लिए, क्या क्या, पहली बात कहता है धन्यवाद हूं, क्यों, जिसने मुझे सामर्थ दी। पहली बात, उस प्रभु यीशु मसीह ने उसको सामर्थ दी। दूसरी बात, वो विश्वास योग कर समझ कर सेवा दी, न केवल सामर्थ दी लेकिन सेवा दी, विश्वास योग समझ कर सेवा दी, न केवल सेवा दी लेकिन तीसरी बात 13 पद के आखिरी भाग में, फिर भी मुझ पर दया की, उसने मुझ पर दया की, क्यों दया की, क्यों दया की, वो आगे चल के वर्णन करता 15 पद में, दया की, मैं तो पापी था, और कैसा पापी था, सबसे बड़ा पापी। 15 पद में, ये विश्वसनीय और हर प्रकार से ग्रहण योग्य बात है कि मसीह यीशु संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। सबसे बड़ा मैं पापी हूं, हम अपने आप को सबसे बड़ा धर्मी समझते, उल्टा समझते हैं, कह रहा मैं सबसे बड़ा पापी हूं। क्या सचमुच में मैं और आप इस बात को समझते हैं कि हम इतने बड़े, मैं इतना बड़ा पापी था कि प्रभु ने मुझे दया की, जिस दिन प्रभु ने मेरे को बचाया, क्या स्थिति थी मेरी, क्या दया थी, जिस दिन यीशु मसीह ने आपको बचाया, कौन सा दिन था जब आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह प्रकट किया कि तुम पापी हो और पापी हो, पाप होने के कारण तुम नाश हो जाओगे, तुम पर दंड की आज्ञा पड़ेगी, क्या आपने उस दिन कहा प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं सबसे बड़ा पापी था। मैं कई बार अपने आप को धर्मी ठहराना चाहता हूं, अपने कार्यों के द्वारा, अपनी विधियों के द्वारा, अपनी रीतियों के द्वारा, अपने तरीकों के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा, और अपने आप को, नहीं नहीं नहीं, पौलुस क्या चीज किसके पास कमी थी, क्या ज्ञान किसके पास कमी थी, नहीं, क्या वो स्थान किसके पास कमी थी, नहीं, क्या पद किसके पास कमी थी, नहीं, वो सब कुछ और कितना अधिक वो जलन रखने वाला था अपनी व्यवस्था का पालन करने के लिए किस रीति से, लेकिन वो आज जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली, आज कह रहा मैं सबसे बड़ा पापी हूं। ये उसकी दीनता थी, ये उसकी नम्रता थी। मेरे प्रियो, जब तक हम स्थान पर ना है, झुके ना, हम प्रभु को नहीं पा सकते, प्रभु को नहीं पाते। आगे जब क्यों कहता है, फिर भी उसने दया की, नकल दया की 14 पद में, प्रभु का अनुग्रह बहुतायत से हुआ। पहली बात उसने सामर्थ दी, दूसरी बात उसने सेवा दी, तीसरी बात उसने दया करी, चौथी बात उसने अनुग्रह किया, और तब उसके बाद क्यों करा वो, वो आगे चल के छठे पद में कहता है, दया के मसीह यीशु में मुझ सब पापी में अपनी पूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करे। और तब 17 पद में कहता है, अब युग युग के राजा अर्थात अविनाशी अदृश्य और अद्वैत परमेश्वर का आदर और मया युगाने को। ये कौन है? ये सुसमाचार, वो सुसमाचार जो यीशु मसीह संसार में आकर, जिसने पौलुस पर दया की, पौलुस को बचा दिया, पौलुस पर दया करके उसको बचा दिया और उसके हाथों में सेवा दे दी, वो कौन है? वो युग युग का राजा है। सारा राज तो आए हैं, राजा आए हैं, कुछ समय के लिए आए, वो चले गए। चाहे दानियल का नबूकदनेस्सर राजा हो, जिसने बहुत कुछ कर दिया था और इतिहास में एक बड़ा नाम करवा दिया, और भी बहुत सारे शासक दुनिया में आए, वो युग युग के नहीं रहे। वो कुछ साल के थे, शायद 100 साल, 50 साल, 80 साल या कुछ और साल, उनका इतिहास खत्म हो गया। लेकिन ये राजा, यीशु राजा कौन है? वो युग का राजा है, सनातन का राजा है। ओ वो राजा, मेरे प्रियो कहता है, युग का राजा, अविनाशी, अदृश्य, अद्वैत परमेश्वर। कितना अद्भुत है वो राजा जो अविनाशी है, वो राजा जो अद्भुत है, वो राजा जो अद्वैत है। ये सुसमाचार है, यीशु मसीह राजाओं का राजा है। लेकिन वो राजा मेरे और आपके लिए मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आ गया। ओ मेरे प्रियो, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, मारा गया, गाड़ा गया, उसने अपनी दया दिखाई, अपना अनुग्रह किया, अपना प्रेम दर्शाया, ताकि मैं और आप बच जाएं और उसके राज के भागी हो जाएं, उसके राज में सनातन काल के सहभागी हो जाएं। ये उसकी चिंता थी, ये उसका प्रेम था, ये उसने मेरे और आपके लिए करा। प्रभु का धन्यवाद हो। ये पौलुस इसलिए तो उत्साहित है, इसलिए तो पौलुस का जीवन में, पौलुस के अंदर वो सुसमाचार की आग लगी हुई है, इसीलिए तो वो किसी परिस्थिति से न डरता है न दबता है, लेकिन प्रभु के लिए पागल बना है, दीवाना बना है। मेरे प्रियो, ये पौलुस का जीवन है। काश ये जीवन प्रभु मेरे और आपके अंदर भी डाल दे, चाहे दुनिया किस तरह जाए, लेकिन हम उसी में होकर आगे बढ़ सके। और तब आगे चल के कहता है, 17 पद से लेकर के 12 पद से लेकर 17 पद तक सुसमाचार है, लेकिन फिर 18 पद से लेकर 20 पद तक वो एक बात और कह रहा है, एक निर्देश दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। आज्ञा क्या दे रहा है? ये आज्ञा है कि मुझे दो चीज को संभाल कर रखना है, एक विवेक को और एक विश्वास को। वो कह रहा है, हे मेरे पुत्र तिमोथियुस, तेरे विषय में जो भविष्यवाणी पहले ही की गई थी, उन्हीं के अनुसार मैं तुझसे तुझे आज्ञा सौंपता हूं कि उनके द्वारा कुशलता से लड़, उनके द्वारा तू कुशलता से लड़ और विश्वास तथा अच्छे विवेक को बनाए रख, जिसकी उपेक्षा करके कुछ लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। और वो हमें का नाम लेता है, सिकंदर का नाम लेता है। ये लोग वो कौन थे? ये लोग वो थे जो एक समय पौलुस के साथ उसके सुसमाचार में सहभागी थे। इफिसी की पत्री में, इफिसी में जो 18-19 अध्याय हमने पढ़ा था, 19 अध्याय, उसमें आपको इन लोगों का नाम मिलेगा। ये वहां थे, और फिर भी बाद में क्या हुआ, ये लोग मुकर गए, ये लोग मुकर गए। और इसलिए वो कह रहा है, तिमोथियुस, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, तुझे आदेश दे रहा हूं। क्या आदेश दे रहा हूं? कि और विश्वास तथा अच्छे विवेक को बनाए रख। ये करना है मुझे और आपको के लिए भी, ये निर्देश है मेरे और आपके लिए, परमेश्वर की आज्ञा है कि मुझे और आपको अपने विवेक को और अपने विश्वास को बनाए रखना है। चाहे परिस्थिति कैसी आ जाए, विरोध आ जाए, संघर्ष आ जाए, कठिनाई आ जाए, झूठी शिक्षा आ जाए, कुछ भी, वो विवेक जिस विवेक में परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा कार्य किया है, एक दिन विवेक मरा हुआ था, उसने उसको जागृत कर दिया, एक विवेक अशुद्ध था, उसने उसको शुद्ध कर दिया, और इस विवेक को अब जागृत होते हुए मुझे निरंतर आपको बनाए रखना है। वो विवेक जो जागृत होकर मेरे पाप को पाप दर्शा सके, मेरे जीवन को दिखा सके, जिस विवेक में मैं अपने आप को संभाल सकूं, झूठी धार्मिकता में नहीं, बाहरी धार्मिकता में नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ, सच्चाई के साथ, खराई के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, गंभीरता के साथ जीवन को व्यतीत कर सकूं। इसलिए ताकि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सुसमाचार जीवन देने वाला है, तो सुसमाचार न्याय करने वाला भी है। सुसमाचार जीवन देने वाला है, तो सुसमाचार न्याय करने वाला है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। यह सुसमाचार है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह सुसमाचार है। लेकिन आगे चल के लिखा है, यदि कोई विश्वास ना करे तो वो दंड पाए। यह सुसमाचार का न्याय संदेश है। और इसलिए हम सुसमाचार में केवल प्रेम नहीं पाते, लेकिन उस प्रेम के साथ साथ न्याय भी पाते हैं, और उसको मुजारों का सामना है। और तब कह रहा है, क्या हुआ? उसको दो दान दे रहा है, जिसकी उपेक्षा करके, अर्थात क्या हुआ, उसको उन्होंने संभाला नहीं, उसको उन्होंने अपने हाथों में थामा नहीं, उसके लिए गंभीर नहीं रहे, उसके लिए उन्होंने परिश्रम नहीं किया, उसके लिए उन्होंने सोचा नहीं, और इसने लापरवाही करी और ऐसा हो गया कि उन्होंने उसकी उपेक्षा करी। और तब बाद में क्या हुआ, हमीनिनस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि उन्हें ईश निंदा ना करने का पाठ सिखाया जाए। समय नहीं कि हम उस तरीकों पर जाएं। पिछले इतवार में जब कलीसिया डिसिप्लिन की बात कर रहा था, हम देख रहे थे वचन में, तो एक तरीका दिखाया गया था। पौलुस ने ऐसे नहीं एकदम से उनको छोड़ दिया होगा, पौलुस ने उनको समझाया। इफिसियों के प्रेरित काम उसके 19-20 अध्याय को पढ़ेगा, उसमें इन लोगों का वर्णन है, और भी जगह पर वर्णन है। लेकिन जब ये नहीं माने, सुसमाचार के साथ इन्होंने खड़ा किया, पौलुस ने कहा ठीक है तुम अपना रास्ता लो, तुम जाओ, अब तुम जानो और तुम्हारे साथ शैतान जाने। वो ये है मेरे प्रियो, अगर हम अपने विश्वास की रक्षा ना करेंगे, कितने लोग चलना आरंभ बहुत अच्छी रीति से करते हैं, जोश में रहते हैं, सुसमाचार को समझते हैं, लेकिन कहीं कोई चीज आए धीरे से वो भटक जाते हैं। धीरे से कोई किसी चीज, कोई लालच आ गया, कोई स्थान हो गया, कोई पद हो गया, कोई धन हो गया, कोई शिक्षा हो गई, कोई और मित्र बन गया, कोई और सब बन गया, धीरे धीरे तो मुड़ जाते हैं। एक बार एक भाई हमारे साथ था, और भाई मेरे साथ था, और क्या नाम से उसने कुछ एक ऐसा रास्ते को ले लिया, और मैं उसकी काउंसलिंग कर लिया, मैं उसको समझाने लगा। जब मैंने उससे कहा भाई आपको परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को समझना चाहिए और सिद्धांतों को लेकर सच्चाई के साथ उस पर चलना चाहिए, तो उसने कहा एक शब्द, कहा बहुत खतरनाक शब्द है, बहुत दुख होता है। उसने कहा मैं इन सारे सिद्धांतों को तालाब में फेंक देता हूँ। उसके लिए सिद्धांत कोई कीमती नहीं था। आज वो लखनऊ में है, उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन उसके पास वो विश्वास नहीं है, वो जीवन नहीं है। दुख की बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को मुझे और आपको गंभीरता से लेना है। जब शिक्षा दी जाती है तो गंभीरता से उसको सुनना है, प्रार्थना करनी है, और झूठी शिक्षाओं से सावधान होना है। और इसलिए पौलुस इस इफिसी कलीसिया को विश्वास में मजबूत करने के लिए ये निर्देश दे रहा है। अभी शुरुआत करी उसने, अब इसके बाद जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तब वो अगुओं के बारे में बताएगा, कलीसिया के लोगों के बारे में बताएगा कि अगुओं को कैसा होना है और कलीसिया के लोगों को कैसा होना है। और इसी चीज को पूरी ये कलीसियाई पत्री है, और इस रीति से कैसे उसकी सेवा पूरी की जानी है। तो प्रभु सहायता करे कि हमने तीन बातों को देखा, किस रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। पहला न केवल अभिवादन था, लेकिन पहले भाग में हम किस प्रकार से अपने विश्वास को शिक्षकों के प्रति हम उत्तरदायित्व हो सकते हैं। दूसरा कि सत्य सुसमाचार के प्रति उत्तरदायित्व हो सकते हैं। तीसरा अच्छे विवेक और विश्वास के प्रति उत्तरदायित्व हो सकते हैं, और उसका हमें थामे रहना है। और परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे कि हम सच में इसके प्रति गंभीर पाए जा सके। मेरे प्रियो, क्या आप सच में प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? क्या सच में आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता पाया है? क्या सच में आपके अंदर ये इच्छा है कि आप मरते दम तक प्रभु में पाए जा सके, और कल जब प्रभु यीशु मसीह आए आप उसके साथ, उस युग युग के राजा के साथ निवास कर सके। इसके लिए अवश्य है कि आपको अपने विवेक को और अपने विश्वास को थाम के रखना होगा, अपने विवेक को और अपने विश्वास को थाम के रखना, और वो विवेक और वो विश्वास परमेश्वर के सच्चे उद्धार के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, और परमेश्वर की सच्ची शिक्षा के द्वारा, साउंड डॉक्ट्रिन के द्वारा वो थामा जा सकता है, वो संभाला जाता है। आइए हम प्रार्थना करें।